हरे कृष्णा। पिछले रविवार को जगन्नाथ जी के प्राकट्य की चर्चा हम लोग पूरी कर चुके हैं। कैसे जगन्नाथ, अलग अलग पुराणों में कथाएं दी गई हैं कि जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए थे। आज चर्चा करेंगे रथ यात्रा की, क्योंकि अब रथ यात्रा महोत्सव ज्यादा दूर नहीं है। 8 जनवरी को यहाँ हम लोग इसको मना रहे हैं, तो इसीलिए रथ यात्रा महोत्सव क्या है, कब प्रारंभ हुआ, और जो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है उसमें कौन कौन से उत्सव शामिल हैं, इनकी चर्चा करेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में 11 उत्सव होते हैं, तो ये जो रथ यात्रा का महोत्सव है, महाउत्सव, ये 11 उत्सवों से बनता है, तो इन 11 उत्सवों की चर्चा आज करेंगे, अगर आज पूर्ण कर पाए, नहीं तो फिर और आगे अगले रविवार को इसकी चर्चा करेंगे। तो जगन्नाथ जी का ये जो रथ यात्रा है, बड़ा प्राचीन उत्सव है। ये पुराणों में कहा गया है, विशेष करके स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि इसका प्रारंभ हुआ स्वरोचिष मनु के सतयुग में। मनु अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु होते हैं। हरेक मनु को जो समय दिया जाता है वो करीब करोड़ों वर्ष का हो जाता है, क्योंकि उसमें 71 चतुर्युग आते हैं। एक चतुर्युग 43,20,000 साल का होता है, और ऐसे 71 चतुर्युग मिलकर एक मनु का समय बनाते हैं, और ऐसे 14 मनु होते हैं। तो जो पहले मनु हुए उनका नाम था स्वयंभू मनु, और उनके बाद दूसरे मनु हुए जिनका नाम था स्वरोचिष मनु। तो ये रथ यात्रा स्वरोचिष मनु के समय में प्रारंभ हुई, अर्थात कहना चाहिए कि करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व। अभी हम लोग 7वें मनु के समय में हैं, तो दूसरे मनु का समय निकल गया, तीसरे मनु का, चौथे, पांचवें, छठे, और अब हम 7वें मनु का भी आधा समय निकल गया, करीब 28 चतुर्युग निकल चुके हैं। तो इस समय में अर्थात करोड़ों वर्ष पूर्व ये रथ यात्रा हुई थी, तो कोई नया उत्सव नहीं है ये। पुराणों के अनुसार करोड़ों वर्ष पूर्व इसका प्रारंभ हुआ था। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जगन्नाथपुरी में या उड़ीसा में वहां के लोग इसको गुंडीचा यात्रा कहते हैं, वे लोग रथ यात्रा नहीं कहते हैं, रथ यात्रा बाहर के लोग कहते हैं, लेकिन वहां के लोग इसको गुंडीचा या गुंडीचा यात्रा कहते हैं केवल, क्योंकि ये यात्रा गुंडीचा मंदिर पर जाती है। तो गुंडीचा जो महाराज इंद्रद्युम्न की महारानी थी, तो उनके नाम पर ये यात्रा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूर्व काल में उन्होंने इस रथ यात्रा को प्रारंभ करवाया था, इसीलिए उनके नाम पर यह यात्रा है। तो इसको गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं, रथ यात्रा भी कहते हैं, क्योंकि भगवान रथ पर सवार होकर यात्रा करते हैं, निकलते हैं। इसे पतित पावन महोत्सव भी कहा जाता है। पतित पावन महोत्सव इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ष भर जगन्नाथ जी के दर्शन पतित जीवात्माएं, सारी पतित जीवात्माएं नहीं कर पाती। आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में ये नियम है कि जिनका जन्म हिंदू परिवार में नहीं हुआ है उनके लिए आज भी प्रवेश वर्जित है वहां पर। तो इसीलिए जो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, जैसे पाश्चात्य जगत के लोग जिन्होंने सही सनातन धर्म का पालन नहीं किया, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक अवसर होता है कि वो जब जगन्नाथ जी को देख सकते हैं। तो इसीलिए इसको पतित पावन महोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि जगन्नाथ खुद बाहर आते हैं, भक्त उनके मंदिर नहीं आ सकते, तो इसीलिए जगन्नाथ जी स्वयं रथ पर सवार होकर बाहर आते हैं और लाखों लोग उनके दर्शन करते हैं। तो इसलिए इसको पतित पावन महोत्सव भी कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद जो हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, बहुत छोटे से थे और उस समय उन्होंने अपने पिताजी से जिद की, छोटा सा बालक, कि मुझे रथ यात्रा करनी है। एक स्थान पर प्रभुपाद बताते हैं कि बचपन से उनकी इच्छा थी जगन्नाथपुरी जाने की, रथ यात्रा को देखने की, लेकिन छोटा बालक अकेले तो जा नहीं सकते, तो उन्होंने अपने पिताजी से जिद की कि मुझे रथ यात्रा बनानी है कलकत्ता में। और क्योंकि उनकी जो इच्छा थी आध्यात्मिक थी, भगवान से जुड़ी हुई थी, उनके पिता ने उसको पूरी करने की ठान ली कि इसको पूरी करेंगे। तो पिताजी लेकर चले गए श्रील प्रभुपाद को, बड़े छोटे से बालक थे उस समय, एक कारपेंटर के पास कि चलो रथ बनवाएंगे। तो वहां पर गए और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे रथ बनाना है तो कितना खर्चा होगा। तो कारपेंटर ने देखा इतना ऐसे ऐसे रथ बना, छोटे बच्चों के लिए बनाना था, तो उसने जो खर्च बताया वो श्रील प्रभुपाद के पिताजी के लिए बहुत ज्यादा था, उतना वो, आप लोग बात मत कीजिए कृपया, उतना वो दे नहीं सकते थे, तो बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने बातचीत की, लेकिन कारपेंटर ने कहा इससे कम तो होगा नहीं, तो खैर वो वापस आ गए कि नहीं बनाएंगे। तो जब वापस आ रहे थे तो प्रभुपाद बहुत रोने लगे, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लेके जाइए बोले चॉकलेट चाहिए, नहीं दिलाते माता पिता, तो कितना रोते हैं सड़क पर, है ना, अभी तो रोते हैं, कभी कभी तो इतना हंगामा करते हैं कि माता पिता को संभालने तकलीफ हो जाती है, रोने की बात तो दूर है। तो बहुत प्रयास करा, प्रभुपाद रो रहे हैं सड़क पर लेके जा रहे हैं उनके पिताजी, नहीं नहीं चलो नहीं बनाएंगे नहीं बनाए, प्रभुपाद रो रहे हैं मुझे रथ चाहिए रथ चाहिए। तो एक महिला वहां से जा रही थी, उन्होंने देखा छोटा बालक इतना रो रहा है। दरअसल ये वो समय था जब बच्चे ऐसे इतनी जिद नहीं किया करते थे, आजकल के बच्चे तो बहुत बिगड़ गए हैं, अब तो जिद ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, हमें तो नहीं पता आजकल आधुनिक क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी पहले वो समय था कि जब बच्चे बड़े सुशील हुआ करते थे, माता पिता से घबराया करते थे, पिताजी अगर सामने हो तो किसी की आवाज नहीं निकला करती थी, आजकल तो डैड डैड कहकर उनको मार डालते हैं, है ना, हाय डैड करते हैं, हाय भी बोलते हैं डैड भी बोलते हैं, पिताजी मर गए हाय हाय। तो ये वो समय था जब ऐसा नहीं होता था, इसीलिए उस स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बच्चा इतना क्यों रो रहा है, माता पिता की नहीं सुन रहा। तो उसने आकर पूछा गौर मोहन दे जो श्रील प्रभुपाद के पिताजी थे, उनसे पूछा क्यों इतना रो रहा है बालक। तो उन्होंने कहा कि इसकी इच्छा है रथ यात्रा करने की और ये पीछे पड़ा है कि एक रथ बनाना है, लेकिन मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं रथ बना सकूं, तो मैंने इसको मना किया इसलिए रो रहा है। तो उस स्त्री ने कहा मेरे घर में एक रथ पड़ा है, आप वो ले जाइए मैं देती हूं रथ। तो उन्होंने, एक उनके घर पर रथ था तो उसको दिया। देखिए भगवान की योजना, प्रभुपाद चाहते थे रथ यात्रा हो, पिताजी के पास धन नहीं था, भगवान ने व्यवस्था कर दी। हम सबको भी विश्वास होना चाहिए, हम सब भी भगवान की रथ यात्रा कर रहे हैं, धन बड़ा कम आ रहा है तो हमें भी लग रहा है कैसे होगा, भगवान करा लेंगे, रथ यात्रा हो जाएगी, चिंता नहीं करनी चाहिए। तो भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी, तो ये रथ आया। प्रभुपाद के पिताजी ने थोड़ा धन दिया, ऐसे नहीं लिया, उसको धन देकर लिया और फिर उसको बनाया, क्योंकि वो इतना जगन्नाथपुरी जैसा रथ नहीं था। और प्रभुपाद ने कहा कि ये पुरी जैसा रथ होना चाहिए, तो पुरी जैसा रथ होना चाहिए, तो रथ था उसके ऊपर 16 खंबे लगाए गए लकड़ी के, पुरी का रथ आपने देखा है खंबे होते हैं उसके ऊपर, छत्र होता है, तो खंभे लगाए गए उसके ऊपर छत्र, करीब 3-3.5 फीट का वो रथ बनाया गया। प्रभुपाद और छोटे थे रथ से, बहुत छोटे, तो रथ बनाया गया। अब छोटे से बालक हैं लेकिन सारी रथ यात्रा की योजना खुद बना रहे हैं, तो उन्होंने आसपास की जो माताएं थीं उनके घरों में जाकर कहा कि आप भोग बनाइए, रथ यात्रा हो रही है। तो उन लोगों ने भोग बनाया, जगन्नाथ जी के छोटे से रथ की यात्रा निकलने वाली है, तो उन्होंने भोग बनाया। तो प्रभुपाद ने जाकर वो व्यवस्था की और फिर कीर्तन होना, ये सारी व्यवस्था प्रभुपाद ने अकेले की, बच्चों को इकट्ठा किया कि कीर्तन होगा। 8 दिन तक रथ यात्रा की प्रभुपाद ने, एक दिन नहीं। देखिए हम लोग जरा से एक दिन रथ यात्रा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं कई महीनों से। प्रभुपाद एक ही अकेले 8 दिन तक उन्होंने रथ यात्रा की। रोज उत्सव होता था, भोग बन रहे हैं, अलग अलग लोग भोग बनाकर ला रहे हैं, भगवान को भोग अर्पण हो रहा है और प्रभुपाद खींच रहे हैं रथ को और बच्चे सब खींच रहे हैं। तो ऐसे ये रथ यात्रा हुई। तो बचपन से प्रभुपाद ने इस रथ यात्रा को किया, महोत्सव को, और जब अवसर मिला उन्हें कि वो सही तरीके से भगवान की सेवा कर सकें, तो उस समय उन्होंने पहली बार भारत के बाहर रथ यात्रा प्रारंभ की। इससे पहले भारत में केवल उड़ीसा में रथ यात्रा होती थी और कहीं पर नहीं। श्रील प्रभुपाद हैं जिन्होंने पहली बार इतिहास में एक रथ यात्रा की विदेशों में। और वो भी कैसे हुई, उस समय मोबाइल्स नहीं थे तो जगन्नाथ जी सीधे बात कर सकते थे, आजकल तो मोबाइल पे करना पड़ता है। कृपया मोबाइल्स बंद रखिए अपने, सभी भक्तों से विनती है मंदिर में अंदर आने से पहले मोबाइल को बंद कर दिया कीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है मोबाइल की। तो जगन्नाथ जी के ये रथ यात्रा ऐसे प्रभुपाद ने की, जगन्नाथ ने सारी व्यवस्था भी कर दी और ऐसी रथ यात्रा रथ यात्रा महोत्सव को बाद में प्रभुपाद ने पहली बार विदेशों में प्रारंभ किया। किसी ने आज तक नहीं किया था, इतिहास है कि विदेशों में। और कैसे प्रारंभ हुआ विदेश में रथ यात्रा, प्रभुपाद के शिष्य थे जो प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते थे कि हम प्रभुपाद को कुछ दें, लेकिन अब क्या दें, सन्यासी को क्या दे सकते हैं, वो तो उल्टा प्रभुपाद उनको सब दे रहे थे, प्रभुपाद को कोई क्या दे सकता है। जब प्रभुपाद पहली बार लंदन पहुंचे तो लंदन के पत्रकारों ने पूछा कि स्वामी जी आप यहां क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज भारत से आए थे तो बाकी सब लूट कर ले आए, एक चीज छोड़कर आ गए, भारत का आध्यात्मिक ज्ञान, वो देने के लिए आया हूं मैं आप लोगों को, आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं मैं यहां पर। तो प्रभुपाद देने आए थे तो उनके शिष्य चाहते थे हम कुछ करें, तो क्या दें उनको कुछ पता नहीं था। तो एक दिन एक ऐसे जगह पे गए जहां भारतीय चीजें मिलती थी, इंडियन स्टोर। अब आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा भारतीय चीजें क्या हैं। जब हम विदेश जाते हैं तो विदेश में कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जहां पर भारतीय सामान मिलते हैं, सारी दुकानों में भारतीय सामान नहीं मिलते, सारी दुकानों में तो कूड़ा करकट मिलता है, मतलब उनके लिए कूड़ा करकट नहीं हमारे लिए, लेकिन भारतीय दुकान भारतीय सामान कुछ ही दुकानों में मिलते हैं। तो वे लोग चले गए, अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो उनको जगन्नाथ जी के विग्रह दिखे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो उनको लगा ये तीन अच्छी गुड़ियाएं हैं, डॉल हैं, गुड़िया से खेलते हैं ना लोग, तो बोले ये प्रभुपाद को हमें प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये तो पता नहीं था कि तीनों साथ में होते हैं, तो उन्होंने एक ले लिया उसमें से, बोले एक ले लिया बस। तो वो ले आए और प्रभुपाद को उपहार देने के लिए आए, प्रभुपाद बैठे हैं और ये लोग आकर सामने रखते हैं। बताइए विदेश में प्रभुपाद अकेले प्रचार कर रहे हैं, अचानक कोई उनके सामने लाकर जगन्नाथ जी को रख देता। प्रभुपाद ने जैसे ही देखा तुरंत उठे, दंडवत प्रणाम किए, सब लोग हैरान हो गए, वो जो लाए थे ये क्या हो गया, स्वामी जी को क्या हुआ, अचानक ऐसा क्या आ गया कि वो एकदम उठ गए। प्रभुपाद ने कहा ये जगन्नाथ है। तो उन्होंने उनको कुछ क्या समझ में नहीं आया विदेशी लोग जगन्नाथ क्या होते हैं, तो देख रहे थे प्रभुपाद के पास। तो प्रभुपाद ने कहा इनके साथ और दो होंगे। बोले हाँ थे लेकिन उनको हम छोड़कर आ गए, वो तो जरूरत है, हमें क्या पता आपको तीनों गुड़ियाएं लानी चाहिए। तो उन्होंने कहा उन दोनों को भी लेकर आओ। तो फिर वो लोग जाकर बलराम जी और सुभद्रा देवी को लेकर आए। और फिर जब जगन्नाथ जी आ गए तब प्रभुपाद ने कहा कि अब रथ यात्रा जो बचपन में उन्होंने की थी, उन्होंने कहा अब यहां पर रथ यात्रा होगी। किसी को पता ही नहीं था रथ यात्रा क्या है। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को रथ बनाने के लिए कहा, प्रभुपाद के शिष्यों ने रथ बनाए, रथ यात्रा हुई। और आज विदेशियों की बात कर रहे हैं, अमेरिका में और लंदन में जहां पर ये रथ यात्राएं प्रभुपाद ने प्रारंभ की, उन स्थानों पर ये एक प्रमुख उत्सव है। उस दिन उस नगर में छुट्टी दी जाती है जिस दिन रथ यात्रा होती है। देखिए विदेशी लोग समझते हैं महत्व को, हमारे भारत में छुट्टी नहीं होती है ना रथ यात्रा के दिन, तो छुट्टी दे दी जाती है क्योंकि रथ निकलने वाला, रथ यात्रा हो रही है। तो ऐसे प्रभुपाद ने इस रथ यात्रा को सारी जगहों पर प्रारंभ किया। आज दुनिया के कई जगहों पर, कई देशों में रथ यात्रा होती है, अलग अलग देशों में जहां जाए वहां रथ यात्रा, जगन्नाथ जी घूम रहे। क्योंकि प्रभुपाद ने कहा ये जगन्नाथ है, ये उड़िया नाथ नहीं है कि केवल उड़ीसा के लोगों के नाथ हैं बाकी सबके नाथ नहीं, ये जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, इसीलिए इनकी रथ यात्रा हर जगह होनी चाहिए। तो ऐसे ये रथ यात्रा उत्सव है। तो अब जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा उत्सव पुरी में होता है उसका वर्णन प्रारंभ करेंगे। जैसे हम बता रहे थे 11 उत्सव इसमें होते हैं, एक एक करके वर्णन करेंगे और फिर देखते हैं आज कितना हम लोग चर्चा कर सकते हैं, अगली बार आगे करेंगे। प्रारंभ का उत्सव होता है पहला उत्सव जिसको स्नान यात्रा कहते हैं। ये रथ यात्रा के करीब 15 दिन पहले प्रारंभ होता है, ये ज्येष्ठ के महीने में होता है जिस दिन पूर्णिमा होती है ज्येष्ठ महीने में, तो इसीलिए इसको स्नान पूर्णिमा का उत्सव भी कहा जाता है। तो स्नान यात्रा, स्नान पूर्णिमा इत्यादि, तो उस समय पे ये होता है। बहुत गर्मी, ये साल का सबसे गर्म दिन होता है जिस दिन ये स्नान यात्रा होती है ज्येष्ठ पूर्णिमा, तो बहुत गर्मी होती है और जगन्नाथपुरी में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो उस दिन भगवान को मंदिर से बाहर लाया जाता है, मंदिर के ही प्रांगण में स्नान वेदी है तो वहां पर भगवान को स्नान कराया जाता है, क्योंकि बहुत गर्मी होती है तो स्नान कराते। कहते हैं कि ये उत्सव राजा इंद्रदुम्न ने प्रारंभ कराया था और उन्होंने 108 सोने के कलशों से भगवान का अभिषेक किया था। आज भी 108 सोने के कलशों से, सुगंधित जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो ये स्नान यात्रा होती है, सबके सामने भगवान बैठते हैं स्नान वेदी पर, और बहुत ऊंची है, मंदिर के बाहर से भी दिखाई देते हैं। तो बहुत भीड़ होती है चारों तरफ, सब लोग देखने आते हैं भगवान के स्नान यात्रा को। पुराणों में ये भी कहा गया है कि ये वो दिन है जिस दिन जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। तो पहले जगन्नाथ जी का कहना चाहिए हैप्पी बर्थडे है उस दिन, स्नान यात्रा, जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे उस दिन। और जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे उस स्थान पर जहां अभी गुंडीचा मंदिर है, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी अपने आविर्भाव स्थान को देखने जाते हैं, अपने जन्म स्थान की ओर जाते हैं देखने के लिए साल में एक बार। तो स्नान यात्रा के दिन प्रकट हुए थे और उनका अभिषेक किया जाता है। तो स्नान यात्रा ये बड़ा ही सुंदर उत्सव है, सबके सामने भगवान को स्नान कराया जाता है और जो उनकी सेवा करते हैं उसके बाद से, उस उत्सव से लेकर अगले 15 दिन तक शबरों के राजा थे विश्व वसु। हम लोग उनके प्राकट्य की जब कथा सुन रहे थे जगन्नाथ जी की, तो उनका वर्णन किया था और हमने वर्णन किया था कि कैसे राजा का मंत्री विद्यापति, उसने ललिता जो शबरों के जो राजा थे विश्व वसु, उनकी पुत्री थी, उनसे विवाह किया था। तो उनके वंशज हैं जो उनको दैतपति कहते हैं। तो वे लोग अब से लेकर आगे 15 दिन तक भगवान की सेवा करते हैं। कई बार कहते कहते वो दैत्यपति कहा जाता है, दरअसल दैत्य नहीं है, दैत है। दैत का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, इसीलिए दैतपति है, दैत्यपति। दैत्य तो फिर हिरण्यकश्यपु हो जाएगा, दैत्यपति तो दैतपति। तो ये लोग सेवा करते हैं अगले 15 दिन भगवान की, और जब स्नान हो जाता है तो स्कंद पुराण में लिखा है कि कैसे भगवान स्नान यात्रा के बाद फिर बीमार हो जाते हैं, ठंड लग जाती है उनको, इतना सबके सामने इतने जल से स्नान कराया जाता है तो ठंडी हवा लग जाती है, इसलिए 15 दिन बीमार हो जाते हैं, 15 दिन दर्शन नहीं देते। वैसे राजा इंद्रदुम्न ने जब पहली बार स्नान यात्रा की थी तो भगवान ने स्वयं उनको ये स्वप्न में कहा था कि 15 दिन तक किसी को दर्शन नहीं होंगे, दर्शन बंद रखो। तो ये 15 दिन भगवान बंद, दर्शन बंद रहते हैं भगवान के। ये दूसरा उत्सव होता है जिसको अनवसर कहते हैं। तो पहला स्नान यात्रा हो गई, भगवान प्रकट हुए, और दूसरा अनवसर। वैसे इस दिन स्नान यात्रा के दिन एक और उत्सव होता है, जब स्नान हो जाता है भगवान का तो जगन्नाथ जी एक सुंदर वेश धारण करते हैं जिसको हाथी वेश कहते हैं। तो जैसे जब भगवान के पूरे सूंड लगाई जाती है, बड़े बड़े कान लगाए जाते हैं, तो हाथी वेश हो जाता है। इसका भी एक बहुत सुंदर लीला है जो हुई एक भक्त के साथ जिनका नाम था गणपति भट्ट। गणपति भट्ट ये गणेश जी के भक्त थे, बड़े पक्के भक्त, और किसी की पूजा नहीं, केवल गणेश जी की पूजा करेंगे। तो उस समय ये सुनते थे जगन्नाथ जी के बारे में कि जगन्नाथ जी सब देवों के देव हैं, सारे देवता उनमें हैं इत्यादि। तो एक समय स्नान यात्रा के दिन ये जगन्नाथपुरी आए, उनकी कोई इच्छा नहीं थी क्योंकि वो एकदम बस गणेश जी की पूजा करनी और किसी की नहीं, लेकिन सब लोग कह रहे थे इसीलिए देखने के लिए आ गए। और जब स्नान यात्रा हो रही थी उन्होंने देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा कि नहीं नहीं मेरे लिए तो गणेश जी ही ठीक है, ये काले भगवान ठीक नहीं है, या जो भी है खैर। तो वो चले गए वहां से, स्नान यात्रा चल रही थी वो चले गए, उनको अच्छा नहीं लगा, मुझे गणेश जी ठीक है। तो उस समय जब वो चले गए तो जगन्नाथ जी के कुछ भक्तों ने जाकर फिर से उनको कहा नहीं नहीं आप आइए तो सही, एक बार उनके दर्शन कर लीजिए अभी। तो बहुत कहने पर जब स्नान यात्रा समाप्त होने के बाद वो आए दर्शन करने और उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो जगन्नाथ ने उनको उस वेश में दर्शन दिया, उनको गणेश जी उसमें दिखाई दिया उन्हें। और तब उनको पता चला कि जो भगवान श्री कृष्ण है जिन्होंने भगवत गीता में कहा है अहम आदिर ही देवाना, जितने भी देवता हैं उनका आदि उनका मूल मैं हूं। तो उस समय जो गणपति भट्ट थे उन्होंने पूर्ण समर्पण किया और उस लीला के स्मरण करते हुए आज भी स्नान यात्रा के दिवस पर भगवान को हाथी वेश पहनाया जाता है, अर्थात उनको गणेश जी का रूप दे दिया जाता है। वैसे जगन्नाथ मंदिर की एक विशेषता है कि कई लोग जगन्नाथ जी को अलग अलग रूप में देखते हैं। शिवजी के भक्त कहते हैं ये शिवजी हैं, ये कृष्ण नहीं है, आप लोग कृष्ण मानते हैं ये शिवजी हैं, वो उनको शिवजी के रूप में पूजा करते हैं। इसीलिए उड़ीसा में आप देखिए एक परंपरा है कि जब शिवजी का कोई एक उत्सव होता है उसमें कई दूर दूर जगह से लोग चलकर आते हैं और वो कुछ रखते हैं साथ में, कुछ पोटली जैसी रहती है, एक ही प्रकार के वो कपड़े पहनते हैं, नीले या पीले ऐसे कपड़े पहनते हैं, और हजारों लोग सारे कहां कहां से प्रांतों से चलकर आते हैं। वो शिव जी के भक्त हैं लेकिन सारे जगन्नाथपुरी में आते हैं और उनकी यात्रा वहां समाप्त होती है जगन्नाथ के दर्शन करके, फिर उनका व्रत पूरा होता है तो वो लोग उनको शिव जी मानते हैं। ऐसे कई अलग अलग तरह से लोग पूजा करते हैं भगवान जगन्नाथ की। तो दूसरा उत्सव शुरू होता है अनवसर। अनवसर मतलब अब जब भगवान दर्शन नहीं देते हैं 15 दिन, 15 दिन भगवान बिल्कुल दर्शन नहीं देते, दरवाजे बंद रहते हैं, जगन्नाथ पुरी के जो ऑल्टर है भगवान का दर्शन नहीं होते हैं। और इस समय में उनको औषधियां दी जाती हैं, फ्रूट जूस पिलाए जाते हैं क्योंकि बीमार हैं, तो 15 दिन वो यही लेते हैं। वैसे एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि भगवान, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको समझाते थे कि दरअसल भगवान इन 15 दिनों में एक आदर्श पति की भूमिका निभा रहे हैं। लक्ष्मी जी के पति हैं, लक्ष्मी जी वह रहती हैं, लेकिन दिन भर उनको पूरा साल समय नहीं मिलता है अपनी पत्नी के साथ संग करने का, समय बिताने का, क्योंकि इतने व्यस्त हैं, दर्शन देते रहते हैं, खाते रहते हैं, समय नहीं है। तो ये 15 दिवस ना वो दर्शन देते हैं ना खाते हैं। 15 दिवसों में आपको, आप अगर जगन्नाथपुरी बाकी वैसे दिन में जाइए तो बहुत सा प्रसाद मिलता है, अन्न प्रसाद, लेकिन इन 15 दिनों में नहीं मिलता क्योंकि लगता ही नहीं है भगवान को भोग। तो इन 15 दिनों में ना वो खाते हैं और ना दर्शन देते हैं, पूरा समय लक्ष्मी देवी के साथ वो बिताते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर समझाते कि एक आदर्श पति की भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे 15 दिन जब भगवान दर्शन नहीं देते हैं तो उस समय जो दैत होते हैं, दैत पति, वे भगवान के शरीर पे फिर से रंग लगाते हैं, क्योंकि पानी डालने से सारा रंग निकल जाता है। और ये जान लीजिए जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वहां, उन पर ये जो सादा पेंट ये सब होता है केमिकल वाला, वो नहीं लगाया जाता है, जो स्वाभाविक प्राकृतिक चीजें हैं उनसे रंग लगाया जाता है। जैसे जो सफेद रंग लगता है बलराम जी को, ये जो पानी में मोती मिलते हैं समुद्र में, उसको पीस कर वो सफेद रंग लगाया जाता है। तो कोई तो इस तरह से ये 15 दिनों में वे लोग उनको रंग लगाते हैं, जगन्नाथ जी के शरीर को पुनः नव यौवन हो जाता है उनका। इस समय में बहुत महत्वपूर्ण, जब चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे जगन्नाथपुरी में, और जब ये 15 दिन भगवान दर्शन नहीं देते थे, तो जगन्नाथपुरी में रहते हुए चैतन्य महाप्रभु सहन नहीं कर पाते थे। ऐसा वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु भागा करते थे दर्शन के लिए, कभी कभी दरवाजे बंद होते थे तो छत से या कहीं से दीवार फांदने का प्रयास करते कि दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं जगन्नाथ जी के। इतनी उत्सुकता उनके अंदर थी दर्शन की। लेकिन 15 दिन दर्शन नहीं होते थे, तो उस 15 दिनों में चैतन्य महाप्रभु वहां से करीब 24 किलोमीटर दूर भगवान के एक बहुत सुंदर विग्रह हैं, जिनको आजकल अलालनाथ कहा जाता है या अलारनाथ कहा जाता है, वैसे उनका नाम है अलवारनाथ। तो ये जो विग्रह है, इनकी सेवा अलवारों ने की है। अलवार आप जानते, दक्षिण भारत में 12 अलवार हुए जिन्होंने तमिल भाषा के वेदों को दिया है। बहुत शक्तिशाली ये भक्त रहे हैं 12 भक्त, जिनमें से एक राजा कुलशेखर भी हैं। तो ऐसे उन अलवारों के द्वारा, ये चतुर्भुज रूप है भगवान का, विष्णु रूप है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इनको कृष्ण के रूप में देखते थे। आचार्य समझाते हैं कि क्यों चतुर्भुज रूप है फिर भी कृष्ण है वो विष्णु नहीं है। इसका कारण समझाते हैं कि जिस समय भगवान गोपियों के साथ लीला कर रहे थे वृंदावन में, तो ऐसा समय आया कि भगवान छोड़कर चले गए गोपियों को। गोपियां ढूंढने लगी श्री कृष्ण को, कहां है कृष्ण, कहां है कृष्ण। तो कृष्ण ने सोचा थोड़ा परीक्षा लेनी चाहिए गोपियों की, तो कृष्ण ने तुरंत चतुर्भुज रूप ले लिया विष्णु का, हाथ में शंख चक्र गदा इत्यादि, और वो खड़े हो गए सामने। तो गोपियां आ रही हैं, गोपियों ने देखा विष्णु हैं, तो जब गोपियों ने देखा तो विष्णु को प्रणाम किया, आपस में कहा ये तो विष्णु हैं, विष्णु जी हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें कृष्ण प्राप्त हो, और चली गई आगे। अर्थात गोपियां दिखा रही थी कि उन्हें कोई रुचि नहीं है विष्णु रूप में भी भगवान के, वो तो केवल कृष्ण को चाहती हैं बस। तो वो चली गई। अब पीछे से राधा रानी आ रही थी। श्री कृष्ण ने सोचा इनको भी थोड़ा सा हम भ्रमित कर देते हैं। गोपियां तो भ्रमित हो गईं, उन्हें लगा ये तो विष्णु खड़े हैं। तो श्री कृष्ण फिर खड़े हो गए चतुर्भुज लूप लेकर, और श्रीमती राधा रानी आई। श्रीमती राधा रानी का प्रेम इतना तीव्र है कि जैसे ही वो सामने आई, कृष्ण चतुर्भुज रूप में थे, उनके जो दो हाथ हैं वो अपने आप गिर गए, वो रख नहीं पाए चतुर्भुज रूप को सामने, जैसे ही श्रीमती राधा रानी को देखा तो फिर वो द्विभुज में हो गए। तो इस लीला के स्मरण के लिए ये चतुर्भुज रूप है भगवान का। तो चैतन्य महाप्रभु वहां चले गए और वहां रहते थे, और ऐसा वर्णन है कि जब उन्होंने जाके दंडवत किया तो वहां शिला थी, पत्थर पर उन्होंने दंडवत किया दूर से भगवान को, और वो शिला पिघल गई। आज भी जब भक्त जाते हैं वहां पर अलारनाथ, तो वहां उनके दर्शन कर सकते हैं कि वो जो शिला है जिस पर चैतन्य महाप्रभु के, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने दंडवत किया तो उनके हाथों के, उनके चरणों के निशान अब भी हैं वहां पर। तो ऐसे अलारनाथ वो जाया करते थे। तो ये अनवसर समय होता है जब भगवान दर्शन नहीं देते और बीमार होते हैं। इसका वर्णन कई स्थानों पर है पुराणों में, नारद पुराण में भी किया गया है कि कैसे भगवान को ठंड लग जाती है इत्यादि, तो वो फिर दर्शन नहीं देते। तो ये अनवसर पीरियड, अनवसर समय होता है। और फिर उसके बाद तीसरा उत्सव आता है। हम 11 उत्सवों की चर्चा कर रहे हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की, अभी तक दो हो गए, कौन कौन से हुए? स्नान यात्रा और अनवसर। अब तीसरा होता है जिसको नेत्रोत्सव कहते हैं, नेत्रोत्सव, नयनोत्सव, नव यौवन रूप इत्यादि। अर्थात जब भगवान अब 15 दिन बाद रथ यात्रा के एक दिवस पहले भक्तों को दर्शन देते हैं, ये वो समय है, इसको नेत्रोत्सव कहा जाता है। नेत्रोत्सव क्यों? क्योंकि नेत्रों के लिए एक उत्सव हो जाता है भगवान को देखना। तो ऐसे नेत्रोत्सव होता है जगन्नाथ जी का। और जगन्नाथ हैं कौन? वही कृष्ण है, अलग अलग अवतारों में जो प्रकट होते हैं मूल भगवान वही कृष्ण है। इसीलिए जगन्नाथ की पूजा अगर हम करते हैं, जगन्नाथ जी की भक्ति करते हैं, तो बाकी सारे अवतारों की, सारे अन्य रूपों की पूजा हो जाती। तो नेत्रोत्सव मतलब भगवान के अब दर्शन हो रहे हैं, 15 दिन दर्शन नहीं है, पहले दिन दर्शन होते बहुत भीड़ होती, सब लोग भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। देखिए ये भगवान का आकर्षण है, भगवान कहीं जाकर बैठ जाएं, हजारों लोग वहां पहुंच जाते दर्शन के लिए। आप देखिए हम जब पहली बार तिरुपति गए थे तो हम यही सोच रहे थे कि और कोई जगह नहीं मिली भगवान को बैठने के लिए, इतना वो ऊपर ऊपर घूम घूम के जाओ और वहां पर, लेकिन लाखों लोग वहां जाते हैं किसके लिए? भगवान के दर्शन के लिए। प्रभुपाद समझाते हैं प्रवचन में कि जिसके हृदय में श्रद्धा है वो लकड़ी या धातु या पत्थर नहीं देखता, वो भगवान को देखता। लेकिन जिसमें श्रद्धा नहीं है वो कहता है कि ये लोग तो मूर्ख लोग हैं, एक लकड़ी रख दिया, एक धातु रख दिया, उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसके सामने कीर्तन कर रहे हैं, ये मूर्ख लोग हैं, श्रद्धा नहीं। तो भगवान को श्रद्धा से देखा जाता है। और श्रद्धा कैसे बढ़ती है? जब हम श्रवण करते हैं, जितना हम भगवान के विषय में सुनते हैं उतनी हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़ती है। और हम जानते हैं कि ये भगवान हैं कौन, ये वही हैं जो अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। इसीलिए एक बहुत सुंदर भजन में एक वैष्णव आचार्य ने लिखा है कि जगन्नाथ भी वही हैं, कृष्ण भी वही हैं, राम भी वही हैं, और चैतन्य महाप्रभु भी वही हैं। तो बहुत सुंदर भजन है, इसको हम एक भजन गाएंगे, आप लोग थोड़ा उसमें साथ दीजिए। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। ये थोड़ी सी किताबें हैं, आप लोग शेयर कर लीजिएगा। यू डोंट हैव मोर बुक्स? मोर बुक्स, किताबें कम हैं, आप लोग एक एक किताब दो या तीन भक्त देख सकते हैं। पेज नंबर 75 पर है, जिनके पास बुक्स हैं वो लोग इसको देख लें। पेज नंबर 75 पर 75। बहुत सुंदर भजन है जगन्नाथ जी के विषय में, तो इसको आज अभी गाएंगे। कृपया सब लोग दोहराइए।
जय जय जगन्नाथ चिरानंदा, त्रिभुवन कर जा चरण वंदन। जय 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 जगन्नाथ चिरानंदा, त्रिभुवन कर जा चरण वंदन। जय जय चल शंख चक्र गदा पद्मधर, नीला चल शंख चक्र गदा पद्मधर, नदिया नगर दंड कमंडल नगर दंड कमंडल का। जय जय जगन्नाथ चिरानंदा, त्रिभुवन कर जा चरण वंदन।
बहुत सुंदर भजन है। भगवान जगन्नाथ जी का वर्णन है, जय जय जगन्नाथ चिरानंदन, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। हे जगन्नाथ, हे सची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु, आपके चरणों का वंदन तीनों लोकों में किया जाता है। आप जब जगन्नाथपुरी में प्रकट होते हैं, नीला चले, जगन्नाथपुरी को नीला चल भी कहा जाता है, तो जब आप वहां प्रकट होते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधर, आपके हाथों में शंख चक्र इत्यादि होता है, लेकिन वही भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में नदिया नगरे मायापुर नदिया में जब आप प्रकट होते हैं, दंड कमंडल उधर, तो आप संन्यास लेते हैं। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि भगवान कहते हैं, कई पुराणों में वर्णन है कि इस कलयुग में लोकानाम तृण कारणा, लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान संन्यास लेते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहलाते हैं। इसीलिए वर्णन है, नदिया नगर दंड कमंडल का, बोले पूरा दे रावण बधिला, बोलो के वैभव लीला प्रकाश करीला, बोले पूरा दे रावण बधिला, बोलो के वैभव लीला प्रकाश करीला। पूर्व काल में आप आए थे और आपने रावण का वध किया, रावण बधिरा, और फिर उसके बाद आप स्वयं आए गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला, अपने धाम की लीलाओं को, सुंदर ब्रज की लीलाओं को आपने कृष्ण के रूप में आकर उसको प्रकट किया, और अब इस कलयुग में आप आए हैं, त्रेता में आप आए, रावण का वध किया, द्वापर में आकर अपनी लीलाओं का प्रकाश किया, और अब वही कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर आए हैं, और क्या कार्य करने आए हैं।
राधे राधे वे गौरावतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करी लखचार, राधे राधे वे गौरावतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करि लखचार,
इस कलयुग में वही कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर आए हैं, उनके अंग की कांति को लेकर आए हैं, गौर अंग, और उन्होंने इस युग के युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को प्रचार किया। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजे। हे राजन, ये कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन इसमें एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य। अगर कोई भगवान कृष्ण का कीर्तन करता है तो निश्चित मुक्ति को प्राप्त करता है, और इसी का प्रचार करने चैतन्य महाप्रभु आए। वही गौर के रूप में आए, गौरांग महाप्रभु के रूप में, वही कृष्ण और वही जगन्नाथ।
वासुदेव घोष बोले हरी चढ़हा, से कृष्ण से जगन्नाथ, वासुदेव घोष बोले हरी चढ़हा, से कृष्ण से जगन्नाथ, से कृष्ण से जगन्नाथ, से कृष्ण से जगन्नाथ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्ण। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पहले दिन भगवान दर्शन देते हैं, नेत्रोत्सव होता है और अब अगला दिन जिसे आषाढ़ महीने की द्वितीया के दिन ये होता है और इस दिन अब जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान होने वाले हैं और ये बहुत सुंदर उत्सव होता है। अभी तक कितने उत्सवों के वर्णन हो गए? तीन हो गए। चौथा होता है जहां भगवान मंदिर से बाहर आते हैं। अभी बहुत सारे उत्सव और बाकी है, रथ यात्रा अभी पूरी नहीं हुई लेकिन अब प्रारंभ होने के पहले भगवान इसमें बाहर आते हैं। इसको पांडी कहते हैं, पांडी भगवान, पांडी विजय या पांडी कहा जाता है। तो भगवान बाहर आते हैं और उनका बाहर आना मंदिर से ये भी बड़ा मधुर है। ऐसे ही नहीं आ जाते भगवान बाहर जैसे हम लोग उठकर चले जाते हैं। भगवान जब बाहर आते हैं सबसे पहले तो बलराम जी आते हैं, फिर सुदर्शन आते हैं, फिर सुभद्रा देवी आती हैं और फिर अंत में जगन्नाथ जी आते हैं। आप में से जो लोग गए हैं जगन्नाथपुरी उन्होंने देखा है कि ऐसा प्रतीत होता है जब कृष्ण और बलराम आ रहे हैं कि मानो दो सबसे बड़े शराबी हैं, नशे में धुत और झूमते हुए आ रहे हैं। उनको जब लाया जाता है, जो ये लोग लाते हैं बहुत से लोग, और धक्का मारना होता है, वो चलते नहीं है आगे, उनको धक्का मारा जाता है, नीचे गद्दे होते हैं रुई के, उसकी रुई उड़कर ऐसे निकल निकल कर फटता है, वो गद्दा पूरा रुई निकल जाती है, उनको धक्का मारना पड़ता है, वो चलते ही नहीं है। और उनको इतना प्रेम है वहां के भक्तों से, जो वहां जो दैत्य उनको लेकर आते हैं, इतना प्रेम है उनको उनसे कि वो लोग उनके हाथ पर लटक जाते हैं, उनको धक्का मारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और जगन्नाथ जी बड़े प्रेम से, तो उनको बहुत बड़ा मुकुट पहनाया जाता है उस दिन, बांस का बना हुआ, दूर से दिखाई देता है क्योंकि लाखों लोगों की भीड़ में सब तो देख नहीं पाते हैं जगन्नाथ जी, तो उनका मुकुट ऐसे 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 घूमता घूमता आता है, नशे में धुत एकदम भगवान आते हैं। भगवान जो भी करते हैं सबसे श्रेष्ठ करते हैं, उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। चोरी करते हैं तो चोरी करने वालों में श्रेष्ठ हैं, चौराग्र गण्यम, उनके जैसी चोरी कोई नहीं कर सकता। हम लोग तो क्या चुराते हैं, थोड़ा बहुत धन चुरा लेते, कोई सोना चुरा लेता है, कोई गाड़ी चुरा लेता है, और क्या चुरा सकते हैं। भगवान जब चुराते हैं तो हमारे लाखों करोड़ों जन्मों से जो हमने अर्जित पाप हैं उसको चुरा लेते हैं भगवान, उनसे बड़ा चोर और कोई नहीं है। छोटी मोटी चीजें चुराना ठीक है लेकिन कई जन्मों से, कई जन्मार्जित पाप चौरम, इसीलिए उनको चौराग्र गण्यम कहा गया, चोरों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। और जब चोरी करते हैं तो उसकी बातें हजारों लाखों सालों तक लोग करते रहते हैं, भगवान ने चोरी की थी। भगवान की सारी लीलाएं ऐसी हैं, देखिए अगर कोई युद्ध में पीठ दिखाकर भाग जाए तो उसको लोग क्या कहेंगे, निंदा करेंगे, समझिए भारतीय सेना है पाकिस्तानी सेना से लड़ रही है, भागकर आ जाए पीठ दिखाकर तो क्या उसको मेडल दिया जाएगा, उसके ऊपर तो पनिशमेंट होगी, उसको दंड दिया जाएगा, लोग थू थू करेंगे कि अरे कैसा सैनिक है पीठ दिखाकर भागकर आ गया। भगवान ने युद्ध में पीठ दिखाई, भगवान युद्ध छोड़कर भाग गए, उसका गुणगान करने के लिए मंदिर बने हुए रणछोड़राय का, और लोग रोज वहां पर जोर जोर से कहते हैं रणछोड़राय रणछोड़राय, तो बताइए। तो भगवान जो करते हैं वो सारा दिव्य है। चोरी की भगवान ने, माखन चुराए लोगों के घरों में जा जाकर, बड़े बड़े वैरागी तपस्वी सन्यासी सुखदेव गोस्वामी जैसे वैरागी आनंद ले लेकर उस लीला का वर्णन करते हैं कि भगवान ने माखन चुराया। चोरी करना कौन सी बड़ी बात है, आपके बच्चे को अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ ले तो आप लोग तो गुणगान नहीं करोगे ना कि बहुत बहुत बढ़िया मेरे बच्चे ने, आप सब जगह जाके कहोगे मेरा बच्चा कितना दूसरों के घरों में जाके चोरी करता है, है ना? कोई कहेगा ऐसा? आप लोग तो थप्पड़ मारते हो उसको, सिखाते हो, करना भी चाहिए, सही बात, मतलब थप्पड़ नहीं मारना चाहिए लेकिन कम से कम सिखाना चाहिए। मगर कृष्ण ने चोरी की, और एक दिन नहीं रोज की जाकर चोरी, और बड़े बड़े वैरागी, बड़े बड़े सन्यासी, शास्त्रों में पुराणों में वर्णन है भगवान ने चोरी की। आज भी हम लोग माखन चोरी की लीला को सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है, सुनने में भी आनंद आता है, कहने में आनंद आता है। ये भगवान है, तो भगवान से सारी चीजें जो भी संबंधित हैं वो दिव्य हैं, इसीलिए हमें आनंद देती हैं। फिर भगवान चोरी करें या जो भी काम करें, तो अब जब बाहर आते हैं तो नशे में ऐसा लगता है उनको, ऐसे हिलते डुलते आते हैं, जाना नहीं चाहते हैं। पिछली बार इसी वर्ष जब हम लोग रथ यात्रा उत्सव में जगन्नाथपुरी में थे, तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोग सुबह से खड़े हो गए थे, क्योंकि जगन्नाथ जी जब बाहर निकलते हैं मंदिर से करीब 7-8 बजे निकलते हैं, मंदिर के बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, तो हम लोगों ने सोचा 9 बजे पहुंच जाते हैं, भगवान मंदिर से बाहर आना कितना दूर है, जैसे यहां से रोड तक जाना तो कितनी देर लगेगी, आधा घंटा लग जाएगा, एक घंटा। तो हम लोग 9 बजे से खड़े हैं, भगवान 3 बजे तक दोपहर को रथ पे ही नहीं बैठे, 3 बजे रथ शुरू हुआ था, 2 बजे तक रथ पे ही नहीं बैठे, वो आए ही नहीं, बाहर आए सब खड़े हैं, कहां है वो चल रहा है, आ ही नहीं रहे, धक्का मार रहे। फिर धीरे धीरे बलराम जी आए, फिर सुभद्रा जी आए, तो धक्का इनको ही मारा जाता है। सुभद्रा जी को तो बड़े प्रेम से वो लोग उठा के ले आते हैं, सुभद्रा जी को लाते हैं तो धक्का नहीं मारते, सुभद्रा नशे में नहीं रहती है ना, नशे में तो ये दोनों हैं, तो इनको धक्का मारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं वो लोग उनके साथ में, फिर भी नहीं जाते। सुभद्रा को थोड़ा प्रेम से ले आते हैं उठा के, उनको ज्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन इन दोनों को तो बड़ा धक्का मारा जाता है। हमने देखा जो होते हैं वो लोग कभी कभी पीठ से ऐसे धक्का मारते जगन्नाथ जी को, चलो आगे चलो, फिर भी नहीं चलते। एक समय हम देख रहे थे कि जगन्नाथ जी को चढ़ाने के लिए रथ पर, ये सारा उस उत्सव का भाग है, ऐसे एक लकड़ी का रंप बनाया जाता है ऐसे, जैसे उस पर चढ़ सकते हैं, तो करीब 500 से ज्यादा लोग धक्का मार रहे हैं उनको, और वो चढ़ ही नहीं रहे हैं जगन्नाथ जी। इतना आप सोचिए कि क्या उनकी लीलाएं हैं वहां पर। तो ऐसे जगन्नाथपुरी में तो ये उत्सव होता है, पांडी जिसको कहते हैं, उसका बस उत्सव तो इतना ही है कि भगवान बाहर आते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा उत्सव होता है, इतना घंटे लगते हैं उसमें कि भगवान को बाहर लाने के लिए, बड़ा सुंदर उत्सव है। तो फिर भगवान को ऐसे नीचे गद्दे बिछाकर धक्का मार मार कर लाया जाता है, तो कई घंटों के बाद फिर वो आते हैं और रथ पर विराजमान होते हैं। और ऐसा कहा जाता है, वैसे जो रथ यात्रा है पुराणों में वर्णन है कि रथ यात्रा जब होती है, अगर इसमें रथ को कुछ हो जाए तो अलग अलग लोगों को प्रभाव होता है। ऐसे कहते हैं कि अगर रथ का पहिया टूट जाए तो जितने ब्राह्मण हैं उनको नुकसान होता है, उनको उसका प्रभाव होता है। जो एक्सल होता है रथ का, दो पहियों को जो जोड़ता है, वो टूट जाए तो क्षत्रियों को उसका प्रभाव होता है, क्षत्रियो को बहुत नुकसान होता है, ऐसे अलग अलग कहा गया है। और कहा जाता है अगर पूरा रथ क्षतिग्रस्त हो जाए, या रथ का जो ध्वज होता है, रथ के ऊपर ध्वज होता है, भगवान के 3 रथ होते हैं, तीनों का अलग अलग नाम है, अलग अलग उसकी हाइट है, तो तीनों के ऊपर ध्वज लगे होते हैं, अगर रथ के ध्वज को कुछ हो जाए तो जो सरकार है उस राज्य की वो गिर जाती है, निश्चित है। अगर जगन्नाथ जी के रथ का ध्वज को कुछ हो गया तो सरकार गिर जाएगी, और अगर रथ क्षतिग्रस्त हुआ तो सारे राज्य को उसका नुकसान भोगना पड़ता है। इसीलिए रथ बहुत संभाल कर बनाया जाता है। ये जो रथ बनता है, हर वर्ष रथ बनाते हैं, आप सोचिए हर वर्ष इस रथ को बनाया जाता है। केवल जो रथ के घोड़े हैं, घोड़ों पर जो बैठते हैं, और रथ के चारों ओर जो अलग अलग देव लगे होते हैं, 14 देव लगते हैं, वो नहीं बदलते हैं। वो केवल जिस समय भगवान का विग्रह बदला जाता है, नव कलेवर होता है, उस समय बदलते हैं। वो हर वर्ष वही रहते हैं, घोड़े वही रहते हैं, घोड़ों पर जो बैठा होता है लकड़ी का चलाने वाला, वो भी वही रहता है, वो नहीं बदलते हैं। भगवान के रथ के ऊपर जो ध्वज चक्र लगता वो नहीं बदलता है, लेकिन पूरा रथ बदलता है। और रथ को बाद में तोड़ दिया जाता है और उसकी जो लकड़ी है वो साल भर भगवान के भोजन बनाने के लिए, भगवान का भोग बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर अगले वर्ष 2 महीने लगते हैं रथ बनाने के लिए, फिर अगले वर्ष करीब 160 लोग मिलकर रथ बनाते हैं। और आप जानते हैं इस रथ में कीले नहीं लगाई जाती हैं। आप लोग भी सोच रहे 160 लोगों का क्या काम है रथ बनाने के लिए, उसमें कीले नहीं मारी जाती हैं, ठक ठक ठक। इसीलिए रथ ऐसा बनता है कि उसमें कोई कील नहीं, उसको जोड़ा जाता है लकड़ी को आपस में, लेकिन कीले नहीं लगती हैं उसमें। और बहुत बड़ा जगन्नाथ जी का जो रथ है जिसका नाम नंदी घोष है, जगन्नाथ जी का रथ 40 फीट ऊंचा होता है, 40 फीट, उससे 1 फीट कम बलराम जी का रथ होता है, तालध्वज कहते हैं जिसको, और उनसे 1 फीट कम सुभद्रा जी का रथ होता है जिसको देवदलन कहते हैं। तो इसी ऊंचाई के बनते हैं तीनों रथ अलग अलग, और अलग अलग रंग के रथ होते हैं। तो इसका वर्णन थोड़ा आगे करेंगे कि कैसे भगवान के जो रथ हैं उसमें क्या क्या लगता है, कैसे बनते हैं। लेकिन ये जान लीजिए हर वर्ष भक्त बनाते हैं 2 महीने लगाकर। तो अगर हम लोग सोचें, हम लोग ये सोच सकते हैं कितनी मूर्खता है, कितनी समय की बर्बादी है। अरे एक बार बनाएं कहीं पर, उसको बांध के रख दें, अगली बार वही यूज करें। ये क्या दो दो महीने रथ बनता रहता है, फिर उसको तोड़ देते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं लकड़ी। तो ये जो रथ बनता है ये भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक सेवा है, भगवान इसको स्वीकार करते हैं। वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि रथ को बनाया, एक ही बार बनाया, रेडी, बस सालों साल यूज करें, लेकिन ये उनकी सेवा है भगवान के प्रति। वहां पर कई लोगों की सेवा है, कुछ लोग केवल रस्सी बनाते हैं, वहां की जो रस्सी होती है 4 इंच चौड़ी होती है, 25-50 फीट लंबी, तो रस्सी बनाते हैं, उनकी वही सेवा है। कुछ लोगों की सेवा रथ बनाना है, साल भर भगवान की ऐसी सेवा चलती रहती है और उनका जीवन उसी में है। तो हमारे लिए देखने की दृष्टि से वो समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए वैकुंठ के द्वार खुल रहे हैं भगवान की सेवा के द्वारा, क्योंकि भगवान की सेवा यही जीवन में सर्वोच्च कार्य है और यही हमें भगवान की प्राप्ति करा सकता है। अन्य कोई मार्ग नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। प्रेम से की गई सेवा यही भगवान को प्रसन्न करती है। और जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे उत्सव का उद्देश्य ही यही है कि भगवान सेवा में लगाना चाहते हैं भक्तों को। कितने भक्त लगते हैं जगन्नाथपुरी में, हजारों भक्त रथ यात्रा के पहले भगवान की सेवा में लग जाते हैं, रथ यात्रा के दिन भी कितने सारे लोग सेवा में लगते हैं। तो भगवान का ये उद्देश्य है। इसी तरह हम लोग भी यहाँ रथ यात्रा महोत्सव कर रहे हैं, जगन्नाथ जी का उद्देश्य सबको सेवा में लगाना। आप सबसे विनती है कि आप सब इस उत्सव को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सेवा में लगे, भगवान की सेवा का यह अवसर है तो इसको छोड़े नहीं, जितनी सेवा हो सके हम करें ताकि जगन्नाथ जी प्रसन्न हो और हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अगले रविवार को आगे के उत्सवों का वर्णन करेंगे, अभी रथ यात्रा प्रारंभ नहीं होती है, जगन्नाथ जी आ गए हैं तो भी अभी नहीं, और एक उत्सव है, फिर उसके बाद रथ यात्रा प्रारंभ होगी, तो इसका वर्णन अगले रविवार को करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, मन में कोई जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न किसी के हो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और अगले रविवार को फिर से इस कथा को आगे रखेंगे। वैसे आप में से कई लोग सोमवार को भी आते हैं, कल शाम को महाभारत की कथा जारी रहेगी, तो आप में से जो लोग शाम को आना चाहें कल भी लोग आ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।